ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਿਰਾਹਿਮ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੋਆ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਵਿਦ ਨਾਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਇਹੋ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੋਆ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਵਿਦ ਨਾਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤੇ, ਜੋ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤੇ, ਜੋ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਰਿਵਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤਦਜਿਹਾ, ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜੀ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮਲਾਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰੱਖੋ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਰਤੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਬਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਬਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਆ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਚ ਦਗਧ ਕਰ ਦੇਣ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਓਗੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਜੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਜਾਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਉੱਚੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਭੇਦ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਡੰਡ ਭੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਦ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੋ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਝਗੜੇ ਮਿਟਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, 72 ਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਕਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਦੀ ਅਹੁਦੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਤਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੂ ਪਹਿਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖਿਜਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਤਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰਨ ਵਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਮਨਮੁਖ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੁੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਤੀ ਦੀ ਟਕੋਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੜਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਰੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਆਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਏ ਸੀ ਬੌੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਆਰਾ ਜਿੱਤ ਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਰਾ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਟੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੀਰ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਤਨਾ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰਲ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ फिर शरीर छड़िया। कवि संतोख सिंह साहब जी जिन्हों की शाम नूं कथा सुन गए गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की, वो लिखते ने अर्धो अर्ध चराए सो डारा, अद्धा अद्धा चीर के धरती से सुट दिता, पर पृथ्वी पर हवाए दोए फाड़ा, दोए सिओ के सिख पिया है, दोनों तन ते जपजी पड़े, दोए सिआं विचों जपजी साहब की आवाज आ रही है। ते हेर ते सबके अचरज बढ़े, जेडे मुसलमान बेवे कहते या अल्लाह मूंह चुंगला पाउंदे आ, ये सिख कैसे ने, शरीर दो टुटे हो गया जी कलाम पढ़ी जाते ने। भाई मती दास साहब जी इस तरह शहीदी हुई। फिर भाई दयाल दास ने पूछया तीन गल्लां केड़ी मननी, उन्हें कहा दो नहीं मननिया, तीजी मननी तैयार है, ना इस्लाम कबूल करना, ना शक्ति विखानी है, तो शरीर कुर्बान करने मैं तैयार हां। भाई साहब जी ने उबलती देग विच बिठाया गया, उबलती देग विच बिठा के उबाले दे के उबाल आलू की तरह उबाल दिता, पर सिख वाहेगुरु 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 की धुनी उचारदा रहा एक रस। फिर भाई सती दास जी ने इन्ने गल्लां पुछियां, उन्हां दी मौत कबूल कीती, उन्होंने रूह लिया के लपेट के तेल पा के चंडा ला दिता, अग्नि ला दिती, गुरु का सिख तड़फिया नहीं, बाणी विच ध्यान जोड़ के बाणी पढ़दा रहा। इस तरह तिना सिखां दी अज जिहड़े गुरु अर्जन गुरु तेग बहादुर साहब नाल गए से उन्हां दी शहीदी होई है। शहीदी दी लिस्ट बड़ी लंबी है, सिख जग दे अंदर बहुत लंबी लिस्ट है। जिन्होंने धर्म नूं अपना लिया है ना, उन्होंने दुनिया की कोई ताकत डुला नहीं सकती। धर्म एक ऐसी खास चीज है, हुण कथा विच कहना पैंदा धर्म खास है, माया वास्ते खास नहीं कहना पैंदा, माया खास लोकी आपे इकट्ठी करी जांदे ने। गुरु अर्जन साहब का भी सिख होया, संत राम जी उन्हां दा नां सी, गुरु अर्जन साहब तो सिखी ली है, सुखमनी साहब का 24 घंटे जाप करी जाते हैं, सिमरन करी जाते हैं, अपनी पालना वास्ते जहांगीर बादशाह के ड्योड़ीदार रहे ने, चूबदार एक मुसलमान वीर भी नाल है, तो दोवें रल के सुखमनी साहब पढ़ते, उन्हें भी याद कराता। एक दिन बादशाह दे घर दे विच शहजादी दी सिख ते निगाह पै गई, कहिंदी शादी करनी है ते सिख नाल नहीं ते निकाह पढ़ाउणा ही नहीं। बेगम नूं कहा, उन्हें कहा समझाया कि गैर धर्म नाल तेरी शादी नहीं हो सकती। बादशाह नूं दस्या लड़की ना मन्नी, बादशाह ने आख्या चलो कोई गल नहीं, सिख नूं मुसलमान बना लवांगे ते निकाह पढ़ के किसी इलाके का सूबा बना देंगे। अज मुख्यमंत्री उदो सूबेदार होंदे सी। इह गल्लां घर विच होईयां, सुनियां किने ने, सुनियां जिहड़ा दूजा पहरेदार है ना मुसलमान वीर, उहदी घर दी राजे दे घर विच गोली सी, उहने सुनियां ते सारी आके अपने घर वाले नूं दस दित्ती आ। जदों सवेरे ड्यूटी ते आके छड्डणा सी, उहने कहा संत राम जी वधाई होवे, उन्हें कहा कादी, उन्हें कहा कल तू बादशाह दा जवाई बन जाना। उहदा शरीर कंब गया, उन्हें कहा खबर पक्की? कहिंदा बिल्कुल पक्की, कित्थों सुनिया ही? कहिंदा मेरी घर दी ने सुनिया, मैनू दस्या। सिख ने रैफल फड़ाई ते निकल गया, पिशौर तक चले गया। कई दिन हो गए इशनान नहीं कीता, प्रशादा नहीं छकिया, धर्मशाला सी क्योंकि उदो धर्मशाला कहिंदे सी। हरिमंदर साहब जदों प्रकाश होया फिर गुरुद्वारिया का नाम मिलिया, पहला धर्मशाला धर्म का घर कहिंदे सी। जदों सिख बन लगा सिपाहियां ने पकड़ लिया पछाण के, क्योंकि हुलिया वाह के बादशाह ने घल्लिया सी, प्यास हुलिए दा सिख जिथे मिले मेरी लड़की ना शादी करनी मनाओ, मन जावे ते पालकी च बिठा के लियाओ, ना मने ते सिर कलम करके मेरे पेश करो। कोतवाल ने पेश किया, कोतवाल कहिंदा सिखा की तेरा सुभा है, मैं चाहना बादशाह का जवाई बना, तू क्यों नहीं बनता? उन्हें आख्या भी गुरु अर्जन साहब ने जिहड़ा मैनू धर्म दिता है ना, वह मैनू बड़ा प्यारा है, मैं धर्म नहीं छड़ना। उन्हें आख्या फिर मनेगा तो पालकी ना मनेगा तो सिर कलम करेंगे, उन्हें सिर कलम कर लो। जदों मैं सिरन मामा अरदास करके वार करियो, सिख ने इशनान किया, पांच जपजी साहब के पाठ करके अरदास करके सिरन वाया, जलाद ने वार किया, धरदे ने जुदा कर दिता, थाली विच रख लिया, लाहौर नू लेके तुर पए, आके आवाज मारी बादशाह सलामत थले आओ। बादशाह बड़ा खुश सी, सिख मेरी लड़की ना शादी करनी मन गया होना, पर जदों थले वेख्या थाली विच सीस पिया तो लहू ना लथ पथ होया, हैरान हो गया कि अल्लाह ये सिख कैसे ने मेरे वर्गे बादशाह की लड़की ना शादी करनी भी मंजूर नहीं करते। अजे सोच रहा सी शहजादी उतर के आ गई, उन्हें सोचा जिउदिया मैं हथ नहीं ला सकी, हुण स्पर्श करके वेख लवा। जदों अगे होके हथ लाउण लगी सवा गिठ थाली नालों सीस उच्चा हो गया, सवा गलिस्त सिर उठो तब ना कबूली मार, पर इसते दे हथ नहीं लगन दिता। बादशाह होर घबरिया कि धरती ना गर्क हो जाए, धरती ना पाट जे मैं गर्क ना हो जावा। कहिंदा या अल्लाह की है लड़कियां दी अब्बा मैं दस दी की है। उन्हें कहा दस। उन्हें कहा वेख सिख जीवदा अपने धर्म विच पक्का रहा है, जीवदिया ने धर्म की पालना की है, तो मरण तो बाद धर्म ही रखिया कर रहा है। जेड़ा जीवदा धर्म नूं धार के धर्म की पालना करता है ना, मरण तो बाद धर्म की पालना करता है। साडे सामने बाबा दीप सिंह जी शहीद, धर्म नूं धारण वाले, ते मुड़के धर्म ने रख्या की है, शीस लखे ते प्यारे दी गली में आए ने। सानू कोई पानी दा गलास पिया देवे असी उन्हें भुलदे नहीं, कि जे असी धर्म नूं धारांगे धर्म नूं मन्नांगे ते धर्म साडी रख्या ना करू, धर्म सानू भी छड के नहीं जाता जे असी धर्म नूं छड के ना जावांगे। गुरु ने अपने सिखां नूं ए शिक्षा दित्ती कि धर्म नहीं त्यागना, धर्म विच रह के जीवन जीवना ते धर्म विच ही मरना है। जिन्हां ने धर्म नूं कमा लिया, जिन्हां ने धर्म नूं धारण करके पूर्ण मर्यादा रखी है, धर्म दो तरह का है, एक अपने इष्ट का धर्म है, हिंदुओं का वखरा धर्म है, मुसलमान का वखरा, सिखां का वखरा है, एक सांझा धर्म है। सुखमनी साहिब तुसीं पढ़दे हो, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, यह सर्व का सांझा धर्म है। तो गुरु ने सानू दोवें धर्म बख्शे ने, जे बाणी बाणी बख्शी है, बाणा बख्शिया तो बाणी ही बख्शी है। यह सिख तू गुरु का दिता भी धर्म धारण करके जीवन जी, स्वश ढंगना जी, ते जो परमेश्वर का नाम है यह भी जप, तेरा धर्म त सफल है। जंग साखियां विच होर ग्रंथां विच लिखिया मिलदा, बाणी बाणा पंख पछाणो, सिंह गुरु का पंछी जाणो, मार उडारी गुर पै जाई, तिसमें भेद न रंचक पाई। बाणी बाणा दो खंभ ने, एक खंभ नाल पंछी उड नहीं सकदा। असि भी परमेश्वर दे देश जाना है, खंभ विकंदड़े जे लहां किन्ना सामी तोल, तंग जनाई अपने लहां सो सज्जन टोल। हुण कई बाणी तां पढ़दे अमृत नहीं छकदे, एक खंभ है, कई अमृत छकदे आ ते बाणी नाल वास्ता कोई नहीं, बाण पा के तुरे फिरदे ने, उह भी एक खंभ है। गुरु गोबिंद सिंह ने सुपना लिया सी कि मेरा सिंह जदों आवे लोग कहण ओ गुरु गोबिंद सिंह दा रूप आ रहा है, ते जदों बोले लोग कहण गुरु बाणा रूप होके बाहर वसदा है ते बाणी रूप होके सिख दे अंदर वसदा है, वह मुकम्मल सिख है। अज उन्हां महान शहीदां दा पवित्र दिहाड़ा है क्योंकि सचे पातशाह काफी समय के दिल्ली में आए ने और राज चरण पाते हुए दिल्ली पहुंचे सी। कल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरता गद्दी का तिलक दिता गया बाबा राम कोयर ने बाबा गुरबख्श सिंह जी का नाम है बाबा बुढ़ा साहब जी इस वंश विचों अज इना तिना सिखां दी शहीदी है ते कल सचे पातशाह जी की शहीदी है। तिलक जन्मू राखा प्रतंका कि बढ़ो कली मैं साका धर्म हेत इतीजन करी शीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर ना दिया। उस पातशाह जी का शहीदी पुरब है जिन्हें हिंदू धर्म की रखिया दे वास्ते अपना शीस बलिदान दिता है। आओ सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे जो अमृत वेले हुक्मनामा आया है उसकी अखरी विचार श्रवण करिए। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुजरी की वार महला तीजा सिकंदर विराहिम की वार की धुनी गाउनी।
गुजरी राग है ते वार नाम है पौड़ियां दा। जेड़े पातशाह जी की वार हुंदी है पौड़ियां भी उसे पातशाह दी हुंदियां ने पर कई वारां विच रलमे श्लोक भी आ जांदे ने। हुण जैतसरी की वार है रामकली की दूसरी वार है वह श्लोक महले ते पौड़ियां सारियां गुरु अर्जन साहब दियां ने। इस वार दे विच पौड़ियां ते कुछ श्लोक ते महले गुरु अमरदास जी दे ने ते कुछ होर पातशाह दी बाणी भी इस वार दे विच आउंदी है। सरलेख इहदा की है सिकंदर विराहिम की वार की धुनी गाउणी। ये पड़ोसी राजे हुए ने दोवें सिकंदर ते विराहिम बादशाह दे टके भरदे सी। जिहड़ा सिकंदर ये परमात्मा सी जिहड़ा विराहिम सी ये विषयी सी। इहदे इन्ने नीच विचार सी जदों कोई अपनी शादी करके लड़की नूं घर लियाउंदा स्त्री नूं लियाउंदा सी ते एक रात ते अपने को रखदा मद कम करदा सी। एडा नीच सी। एक ब्राह्मण ने शादी कराई तो सिकंदर को चले गया कि मैं अपनी स्त्री नूं पिंड विच नहीं खड़ना उहदे राज विच नहीं खड़ना जिस करके मेरी इज्जत ते मेरी घरवाल दी पत्त बची रहे। सिकंदर ने उहनूं समझाया ब्राह्मण नूं उह समझिया नहीं। फिर फौजां लेके चढ़ाई कीती जित दी प्राप्ति करके उहनूं अंदर ले दिता। फिर ज्ञानवान पुरश भेज के उन्हू समझा रहा भाव भगती का रस्ता वैराग का रस्ता। जदों ये समझ गया उदों दा राज भाग नू वापस दे दिता माड़े कम छड़ा के। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने श्री अकाल तख्त साहब ते ये वार सुनी ढाडियां दे कोलों ते हुक्म कीता कि गुजरी दी वार दे नाल पौड़ियां इस तर्जना गाईयां जाण। इस करके ये वार दा सरलेख है इस धुनी विच गाउणा है उस लय विच गाउणा है।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
एक अद्वैत ब्रह्म है जिहदे वर्गा दूजा कोई नहीं। ओंकार सारयां दा प्रकाशक रूप है। ओंकार उचारण मात्र से रखिया करता है। सत सच्चा है त्रय काल आबाद है गुर चेतन है। गो अंधेरा ते रूप प्रकाश अज्ञान दा अंधेरा मेट के ज्ञान दा प्रकाश करन वाला ते प्रसंत प्रसाद कही आनंद स्वरूप है। प्राप्ति कि तरह होंगी एक ओंकार वाहिगुरु की कहते गुर प्रसाद गुरु की कृपा दे नाल वाहिगुरु की प्राप्ति होंदी है।
श्लोक महला तीजा।
श्लोक सालोक उस लोक की प्राप्ति कराने वाला परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाला महला नाम है स्वरूप का ते तीजा तीजे पातशाह ज्यादा यह श्लोक है
इहो जगत ममता मोआ जीवन की बेद नाहे
हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे जिहड़ा जगत है इहदे तीन नां ने इहनूं दुनिया भी कहिंदे ने संसार भी कहिंदे ने जगत भी कहिंदे ने जगत दा अर्थ की है जा जमना ते गत नाश होना दुनिया का अर्थ की जिहड़ियां दो नीहां ने जमना ते मरना संसार का अर्थ की है परिणामवाद रूप प्राप्त होने वाला घटन वाला उसनूं कहिंदे संसार इत्थे सच्चे पातशाह जगत शब्द वरत्या कहिंदे जगत जिहड़ा है ना यह ममता मोआ यह माया की ममता विच ही मर गया मैं मेरी विच ही मर गया आ चीज मेरी है आ चीज तेरी है आ तेरी नहीं आ मेरी है ये सारा संसार ममता दे विच ही मर गया जिंदगी बर्बाद कर ली ते जीवन की विध ना है जीवन की विधि तरीका इनू आया ही नहीं हुण कई बंदे पशुआं दी तरह जीवदे ने पशुआं नाल बदतर कम करदे ने उन्हां नूं पता ही नहीं असीं मनुख हैं कितना जीवना है यह तां गुरु कोल आईए ते जीवन का पता लगता है जीवन कितना बसर करना है क्योंकि तीन चीजां होंदियां जम्मण जीवन ते मरन जीवन ते मौत साडे कोल नहीं जीवन साडे कोल है जीवन कितना बसर करना साडी मर्जी है बुरे काम करके करना कि चंगे करके करना फिर फल साडे हाथ विच नहीं इस करके जीवन की विधि तरीका इनू नहीं आया
गुर का भाणा जो चला ता जीवन पदवी पाहे
पूछिया सच्चे पातशाह फिर जीवन का तरीका कितना आवे जीविया कितना जावे मर्ग दे गुर का भाणा है जो चले जिहड़ा गुरु दे भाणे नाम है हुक्म दा असी वैसे घाटे तो मुराद ले ली है फलाने घर भाणा वरत गया है किसी घर बच्चा पैदा हो मैं कह दिया क्या सोहना भाणा वरत्या शायद तुम नाराज हो जाओ पर भाणा घाटे तो नहीं है गुरु अमरदास जी कहते हैं जा तुस भाणा तो जमे भाणे का अर्थ हुक्म जिहड़ा गुरु के हुक्म चलता है तो जीवन पदवी पाहे तो असली जीवन की पदवी असली जीवन मुक्ति वह पा लैंदा है उन्हें जीवन का ढंग हो जाता है वह जीवदिया मुक्त हो जाता है
ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे
हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे ने ओए कूड़ी का मूंह खुला इशारा है ओ गुरमुख सदा सदा ही जी गुरमुख जन जीवदे ने शरीर करके भावे दुनिया तो तुर जाते ने पर उन्हां दे जीवन दे जो कौतक ने जीवन दी जो देन है संसार नूं वो सदा कायम रहिंदी है केड़े जो हर चरणी चित लाहे जिहड़े हरी वाहिगुरु परमेश्वर दे चरणा दे नाल चित जोड़ लैंदे ने हुण साडे व्यक्तिगत गुरु नहीं हुण शब्द गुरु ने हुण हरी दे चरण केड़े ने चित चरण नाम जिहड़ा चित विच वाहिगुरु का नाम धारना है उही चरण धारने ने सतगुरां दे शब्द ही चरण ने जिहड़ा इन्हां नाल चित ला लैंदा है वह सदा जीउंदा है
नानक नगरी मन वसै गुरमुख सहज समाहे
सच्चे पातशाह गुरु अमरदास जी कथन करदे ने नदरी जदों परमेश्वर की नदर हो जाती है वो मेहर की नजर करता है कि वह करता नहीं वह करता असी कराते नहीं कृपा तो सदा वरती जाती उसकी फिर वाहगुरु मन विच वस जाता है उस वाहगुरु का नाम हिरदे अंदर टिक जाता है तो गुरमुख सहज समाहे वो गुरमुख फिर सहज स्वरूप दे विच समा जाता है मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण अपने मुढ़ नूं पछाण लैंदा है अपने स्वरूप नूं पछाण लैंदा है
महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर धंधा मार
सच्चे पातशाह नूं मनमुखां दा कथन करदे ने कहिंदे मनमुखां दे हिरदे दे अंदर परमेदत संसा है, परमाणगत संसा है, विपरजे संसा है। तीन संसे होंगे ने। यह संसा भरम बनिया रहा ये करके दुख है, मनमुख में जमण तो मरण का दुख बनिया रहा, जमण मरण में आता रहा है। तो आप सिर धंधे मार, वो अपना सिर धंधिया मारदा है, रोज धंधिया खचित होया रहा, धंधिया लगा रहा। रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लिहे न हर को नाम, खिन बातरू वैगरू याद नहीं करता। धंधिया सिर मार के सारी दिहाड़ी दिन रात कढ लैंदा है।
दूजा पाए सुते कबे ना जाग है, माया मोह प्यार।
मनमुख जेड़े पुरश ने वह द्वैत भाव दे विच अविद्या दी नींद विच सौंगे ने, उन्हों का मन सौ गया, क्योंकि शरीर तो रूटीन ना सौंदा भी है जागता भी है। गुरबाणी में शरीर को जगाने की गल नहीं कही, मन में जगाने की गल कही है। जाग ले हो रे मना जाग ले हो, जाग रे मन जागण हारे। तो जेडे अविद्या की नींद में द्वैत भाव लग गए कदे ना जागे, वो ज्ञान जागृत कभी भी जागते नहीं हैं। तो माया मोह प्यार, उन्हों का माया के मोह प्यार लगा रहा है, इधरों भी कट्ठी कर ला इधरों मिल जाए। वो दिन रात माया के होके भरता रहा, माया नाल ही प्यार करता, माया नूं धूफ देंदा रहा है।
नाम ना चेता है, शब्द ना विचार है, यो मनमुख का आचार।
कहते मनमुख की पछाण की है, मनमुख के अर्थ ने जिन्हें मन नूं मुख रखिया, जो मन ने किया वह खा लिया, जो मन ने किया बोल दिता। मनमुखा का आचार करतब ही है, मनमुखा का काम ही है कि नाम ना चेत, नाम नहीं चेतते, वाहगुरु का सिमरन नहीं करते, नितनेम नहीं करते, शब्द ना विचार। जो गुरु का शब्द उपदेश है ना, वो विचार नहीं करते भी गुरु का उपदेश की है, गुरु का उपदेश की है। अमृत वेले उठना, इशनान करना, कर इशनान सिमर प्रव्यापना, सारी दिहाड़ी वाहगुरु का जाप करना, धंधा करदिया भी जाप करना, यह गुरु का उपदेश। उन्होंने याद नहीं विचारते नहीं हैं।
हर नाम ना पाया, जन्म बिरथा गवाया।
कहिंदे हरी नाम नूं उन्होंने पाया ही नहीं, प्राप्त ही नहीं किया, लोड़ ही नहीं समझी, ते अपना जन्म व्यर्थ गवा लिया।
नामक जम मार करे खुआर।
कहते फिर जम आ जाते ने, उन्हें मारते ने, तो जीवना में पा के खराब करते ने, दुखी करते ने, तो जमा नूं वड्डी देना चाहता। जमा अगे अरदास करदा, गुरु अगे सारी उम्र अरदास नहीं की। जब जम आ पुछदे आ क्या तैं खटिया, कहां गवाया, चलो शिताब दीवान बनाया। ये कहिंदा करो अरदास गाम किश बाकी, अरदास करदा मेरी पिंड विच कोई रह गई आ लैण देना, मैं कर लवां। लियो नवेज आज की राती, अज ही रात नूं नवेल लवांगा। वो कहिंदे ना, देखो जमा अगे अरदास करदा, गुरु अगे नहीं करदा। जे गुरु अगे अरदास कीती हुंदी ते जम तो दूर रह जांदे, दूर रही वो जन ते बात। ते जे जम मिले भी ना, ते जम काल मिले दे भेट सेवक ने धोई, वो सेवक बन जांदा है। नेता प्रतिदा
पौड़ी अपना आप उपायोन, तदो होर ना कोई।
बादशाह महा महाप्रलो का कथन करते ने। एक प्रलो है, मर जाना प्रलो, नित प्रलो सौ जाना, अवंतर प्रलो मात लोक दे, दुनिया का खत्म हो जाना, मर जानी। महाप्रलो टाइम तो कोई नहीं रहिंदा, माधु सोलह विचों कथन की है। कहिंदे जो सच्चे पातशाह अकाल पुरख महाप्रलो करदे ने, अपना आप उपायोन तदो होर ना कोई, होर कोई नहीं हुंदा, उदो परमेश नहीं हुंदा। दसम पात कहिंदे खेल खेल अखेल खेलना अंत को फिर, सारिया खेडा खेडना कला ही रह जाता, फुर समाधि ला के बैठता है।
मता मसूरत आप करे, जो करे सो होई।
मता अर्थ है सलाह का, मसूरत अर्थ है मशवरे का। वह किसी को मशवरा लेना, दसी पिया करा कि ना करा, वो जो चाहना सलाह नहीं करता, अपने आप जो उन्हें करना जो सृष्टि सजनी है साज देनी है जो नहीं सजनी उदो खत्म कर देनी है ओरी इच्छा है।
तदहो आकाश ना पाताल है ना त्रै लोई
ना आकाश सी ना पताल सी ना तिल लोक सी स्वर्ग लोक मात लोक ते पताल लोक उदो नहीं सी कला परमेश्वर सी।
तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई
उस टाइम ते निरंकार आकार से रहत वहगुरु आप ही सी ते उत्पत्ति भी कोई नहीं हुई सी ना ब्रह्मा दी ना विष्णु दी ना शिव जी किसी भी उत्पत्ति नहीं सी हुई।
ज्यों ते सपावे ते वह करे तिस बिन अवर ना कोई
सच्चे पातशाह कहिंदे ने ज्यो तुस भाव है तमें करे जिस तरह वाहगुरु नूं पाउंदा है ना उस तरह करदा दियो पूछदा मसलत धरे जो किश करे सो आपे करे उहदा कोई सलाहकार नहीं वह किसी नूं पुछदा नहीं जो ने करना वाहगुरु ने अपने आप तो करदा है ते तिस बिन अवर ना कोई उस तो बिना होर दूजा कोई नहीं। उस वाहगुरु ने संसार की खेड नूं रचिया है मदारी की तरह जदों चित करला संकोच लैंदा है ते कला बाजीगर ही रह जाता है कला परमात्मा ही रह जाता है। इस करके सारा संसार परमेश्वर का पैदा किया होया है जेड़े भाने भी चलते ने जीवन पदवी पाते ने जेड़े मनमुख ने वो आते ते जाते रहिंदे ने गुरु कृपा करे मेर करे सानू भी अपना उपदेश दे के खंडे बट दा अमृत छकीए बाणी बाणी विच परपक्क होके अपना जीवन सफल करिए जिस करके साडा आउणा संसार ते सफला हो जाए। विचारां करदिआं एक प्रकार दीआं त्रुटियां हो जांदीआं ने सच्चे पातशाह बख्श लैण। सो साडे सत्कारयोग सिंह साहिब जी सो ज्ञानी रघुवीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्नवाद संगत का धन्नवाद धन गुरु रामदास पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहिब का कोटानकोट धन्नवाद होइयां भुल्लां चुक्कां दी माफी पंक्तियां पढ़ के समाप्ति है जी।
तदहो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई ज्यों तिस भावै तवै करे तिस बिन अवर ना कोई। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।